सत्यवचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से प्रेरितों के काम नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मनीत है तू, मेरा संगीत है तू, मेरा
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और मैं भी आपकी प्रार्थना के द्वारा कुशल पूर्वक हूं। मैं अपने उन नए श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूं जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम प्रेरितों के काम नामक पुस्तक से, जो बाइबल की पुस्तक है, अध्ययन कर रहे हैं और हम देख रहे थे कि यरूशलेम में आने वाले संकटों को जानने के पश्चात भी पौलुस यरूशलेम को गया। वहां उसके साथ अन्य जाति इफिसुस वासी त्रिफिमूस को देख यहूदियों ने झूठा बहाना बनाकर पौलुस पर मंदिर की निंदा का दोष लगाया कि वह अन्य जाति को अपने साथ मंदिर में लाया, अर्थात उसने मंदिर का अशुद्ध किया है और वहां बड़ा उपद्रव हुआ। यह देख सेना का सरदार तुरंत सेना लेकर आया और पौलुस को बंदी बनाकर ले गया। उसने पौलुस से बात की तो देखा कि वह बहुत अच्छी यूनानी भाषा बोलता है। पौलुस के आग्रह पर उसने पौलुस को अनुमति दे दी कि वह मंदिर में उपस्थित भीड़ से बात करे। पौलुस ने ज्यों ही इब्रानी भाषा बोलना आरंभ किया त्यों ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। अब पौलुस उन्हें अपनी कहानी सुनाता है, अर्थात अपनी जीवन की गवाहियों को उन्हें बताता है, परंतु अन्य जाति का नाम आते ही भीड़ फिर से भड़क उठती है। सेना का सरदार तो इब्रानी भाषा नहीं समझता था, अतः वह पौलुस को बंदी बनाकर गढ़ में ले जाता है। और तब सेना का सरदार सोच रहा था कि पौलुस एक मिस्री विद्रोही है, अतः उसने उसे कोड़े मारकर सच उगलवाने का विचार किया, परंतु यह जानकर कि वह जन्म से ही रोमी नागरिक है वह डर गया और उसने यह उचित समझा कि पौलुस को महासभा के समक्ष उपस्थित करे जिससे कि उसे उपद्रव का कारण समझ में आ जाए। मित्रों, यही परिस्थिति है यहाँ पर। आइए अब हम आगे बढ़ें, लेकिन इसके पूर्व हम आज के अध्ययन के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है, ताकि हम दूर दराज में रह करके भी आपके वचन का अध्ययन एक साथ कर सकते हैं, ताकि हमारे जीवन में हम आत्मिक लाभ को प्राप्त करें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप प्रत्येक श्रोता भाई बहन को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोले और बातचीत करने पाए। हमारे उन श्रोता भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना है जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, जो निराश हैं, जो आर्थिक तंगी से दबे हुए हैं और किसी न किसी तनाव में है। प्रभु, आप उनकी सहायता करें, उनके जीवन के विश्वास को जगाएं, आपकी ओर निहारने में उनकी मदद करें, ताकि आप पर भरोसा रखकर इस बात को जान सके कि आप सामर्थ्य प्रभु हैं, आप जीवन के दाता हैं, आप शांति के दाता हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आप हम सब की सहायता करें। प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि पौलुस को सभा के सामने लाया गया, आइए हम आगे देखते हैं। पौलुस महासभा के समक्ष अपना प्रतिवाद रखता है। याद रखें कि पौलुस बंदी बनाया जा चुका है और वह अंत तक बंदी ही रहेगा। अब से और अंत तक हम पौलुस को अपने और अपनी सेवा के विषय में प्रतिवाद प्रस्तुत करते हुए ही देखेंगे। उसे अनेक शासकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि यहूदी उसे घात करने का षड्यंत्र रच रहे थे। इसलिए उसे कैसरिया भेज दिया गया और वहां वह 2 वर्ष बंदी गृह में रहा और कैसर की दुहाई देने के कारण उसे रोम भेज दिया गया। मेरे मित्रों, आपको याद होगा कि पौलुस के यरूशलेम जाने के बारे में मतभेद उत्पन्न हुआ है कि क्या वह परमेश्वर की इच्छा में था। मेरा विचार यह है कि वह निश्चय ही प्रभु की इच्छा में था। मेरे विचार में हम अपने अपने अध्ययन में ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों हम देखेंगे कि निश्चय ही उसका यरूशलेम जाना प्रभु की इच्छा में था। यह सच है कि वह बंदी बनाया गया और यह भी सच है कि वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में रहा, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह परमेश्वर की इच्छा में नहीं था। मेरे मित्रों, अपने अध्ययन में हम देखते चलेंगे कि पौलुस के जीवन में हर कदम पर परमेश्वर का हाथ है। वही परमेश्वर आज आपके और मेरे जीवन में भी काम करना चाहता है। मेरे मित्रों, यही तो इसकी महिमा और चमत्कार है। इसी समय जब वह आप और मैं सार्वजनिक स्थान में हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्रियाशील है। हम एक प्रकार से अति दीन जीवन जी रहे हैं और हम में से अनेकों की जीवन शैली अति सरल है, फिर भी परमेश्वर हमारी चिंता करता है और हम में रुचि रखता है। परमेश्वर हमें वह मार्गदर्शन और अगुवाई प्रदान करना चाहता है जो हमारे लिए आज आवश्यक है, चाहे हमारे इस युग की संस्कृति कैसे भी जटिल क्यों न हो। मेरा विश्वास कीजिए कि हमें उसकी सहायता की आवश्यकता है। इसमें दो राय नहीं कि आज के परिदृश्य में हमें परमेश्वर की अधिक आवश्यकता है। मेरे मित्रों, आज बहुत से जन ऐसे हैं जो सीमा पार करना चाहते हैं कि पुलिस की नाई महान भावनात्मक और परिवर्तनकारी अनुभव को प्राप्त करें। मेरे विचार में हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, और सच तो यह है कि ऐसे महान अनुभव पाने के प्रति मैं संदेह करता हूँ। सीधे साधे विश्वास के द्वारा ही मनुष्य मसीह के पास आ जाता है। हमें उसमें विश्वास करके उसकी संगति में रहना है। वह हमारे दैनिक जीवन में अगुवाई करेगा, हमें मार्गदर्शन प्रदान करेगा और दिशा निर्देश प्रदान करेगा। मित्रों, हमने देखा है कि रोमी सेना का सरदार पौलुस को बंदी बनाकर उसे कोड़े मारना चाहता था, परंतु यह जानकर कि वह अर्थात पौलुस रोमी नागरिक है, वह तुरंत पीछे हट गया। उसे आश्चर्य हो रहा था कि पौलुस एक यहूदी होकर इतनी अच्छी यूनानी भाषा बोलता है और उसके पास रोमी नागरिकता भी है। पौलुस उच्च शिक्षा प्राप्त एक अंतरराज्यीय मनुष्य था। अब यहूदियों के धर्मगुरुओं की महासभा पौलुस पर विचार करना चाहती है। पौलुस अपनी स्थिति, अपने आचरण को महासभा के सामने निर्दोष रखने का प्रयास करता है, परंतु व्यर्थ है। मेरे मित्रों, प्रभु पौलुस को ढाढ़स बंधाता है। हम यह भी देखेंगे कि पौलुस की हत्या के षड्यंत्र के कारण उसे फेलिक्स के न्यायाधीन कैसरिया को भेज दिया जाता है। यह बाइबल अंश एक उत्कृष्ट भाग है और मसीह का बंदी पौलुस के अनुभव का रोमांचक वर्णन है। मित्रों, हम देखेंगे कि महासभा के समक्ष पौलुस का प्रतिवाद। आइए हम प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़ें। लिखा है, पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। हनन्या महायाजक ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। मेरे मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पौलुस महासभा के समक्ष है, महायाजक और सदस्य वहां उपस्थित हैं, और यहाँ पर महायाजक की अभद्रता अति भयावह है। वह पौलुस को बोलने का अवसर ही नहीं दे रहा था, अंततः उसे सुनना भी पड़ा। हम प्रेरितों के काम 23 अध्याय के 3 पद में आगे पढ़ते हैं, तब पौलुस ने उससे कहा, हे चुना फिरी भी भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्या, व्यवस्था के विरोध मुझे मारने की आज्ञा देता है। मेरे मित्र, रोमी कानून के अनुसार निर्णय आ जाने तक किसी अपराधी को दंड नहीं दिया जा सकता था। किसी को बंदी बना लेना और अपराध का दोष लगाना बंदी बनाने वाले को उसे दंड देने की अनुमति नहीं देता है। उस युग में रोम वास्तव में न्याय प्रदान करता था। तथापि पौलुस की यह घटना और यीशु का मुकदमा प्रकट करता है कि रोमी न्याय भी विकृत किया जा सकता था, न्याय करने वाले के हाथ में होता था और न्याय न्यायाधीश ही सारे निर्णय को सुनाता था। मेरे प्रियो, आज अनेकों का विचार यह है, यदि हम अपनी सरकार बदल दें तो हमारी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, परंतु अतीत में तो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। हम सोचते हैं कि हमें प्रशासन बदलना चाहिए, परंतु क्या आप जानते हैं कि हमारी मूल आवश्यकता क्या है? हमें मनुष्य के मन परिवर्तन की आवश्यकता है, न कि किसी सरकार को बदलने की। मेरे मित्रों, महायाजक पौलुस के मुंह पर थप्पड़ मारने को कहता है। पौलुस उसे कठोर शब्द कहता है। इससे यह धारणा खंडित होती है कि पौलुस एक दब्बू मनुष्य था। यह मानना कि दीनता मनुष्य को गोबर गणेश बना देती है उचित नहीं है। दीनता या नम्रता का अर्थ है कि आप स्वयं को परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर देते हैं, चाहे कैसी भी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े। पौलुस एक दीन एवं विनम्र मनुष्य था, परंतु वह चुपचाप रहकर अन्याय सहन नहीं करेगा। वह महायाजक को चुनी पुती हुई भीत या दीवार कहता है, हे चुना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्या, व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है। इससे प्रकट होता है कि पौलुस व्यवस्था का ज्ञाता था। मेरे मित्रों, अपराधी को तब तक दोषी नहीं कहा जा सकता था या दंड नहीं दिया जा सकता था जब तक कि उसके बारे में निर्णय न दे दिया जाए। आज भी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा कहता है? पौलुस को पहचान में आया कि वह महायाजक था। वह उसे देखकर ही पहचान सकता था। मन परिवर्तन से पूर्व वह भी एक फरीसी था। यह एक और ही प्रमाण है कि पौलुस की आंखों में समस्या थी और वह ठीक से देख नहीं पाता था, परंतु पौलुस की पत्रियों में हम देखेंगे कि वहां उसकी दृष्टि के साथ समस्या के उल्लेख हैं। प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है कि अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कह। पौलुस व्यवस्था का ज्ञाता था। वह व्यवस्था की छोटी छोटी बात जानता था, इसलिए वह जानता था कि व्यवस्था के शासकों का आदर करने की आज्ञा दी गई थी। यह और एक बात है जो हम आज भूल चुके हैं। मेरा अपना विचार यह है कि हमारे नेताओं का कार्टून नहीं बनाया जाना चाहिए। हमें उनके पद का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए। रोमियों की पत्री अध्याय 13 पद 7 में पौलुस लिखता है, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिसे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। मेरे मित्रों, यह बड़ी रोचक बात है कि उसने यह तब लिखा था जब नीरो रोम के सिंहासन पर बैठा था। नीरो एक पागल मनुष्य था। हम प्रेरितों के काम 23 अध्याय के 6 पद में पढ़ते हैं, तब पौलुस ने यह जानकर कि कितने सदूकी और कितने फरीसी हैं, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। ध्यान दीजिए, हमें पौलुस की पृष्ठभूमि की और अधिक जानकारी प्राप्त हो रही है। उसका पिता भी फरीसी था, वरन एक धनवान एवं प्रभावशाली मनुष्य था। पौलुस अपने प्रतिवाद को स्थापित करने के लिए दो दलों में मतभेद उत्पन्न कर देता है। यह मुख्य विषय मसीह यीशु का पुनरुत्थान नहीं था। यह बात यह थी कि फरीसी मृतकों के पुनरुत्थान में विश्वास करते थे और उनकी आशा भी यही थी, परंतु सदूकी इसे नहीं मानते थे। अतः पौलुस अपने अभियोग को धर्म विज्ञान के वाद विवाद में बदल देता है, जिसमें एक ओर रूढ़िवादी और दूसरी ओर स्वतंत्र विचारवादी थे। ऐसा समय पहले कभी नहीं आया था कि कोई इन दोनों समुदायों के एक दूसरे की जान का प्यासा बना दे। यहाँ पौलुस ने यही किया। हम प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसके 7 से 9 पद में पढ़ते हैं, जब उसने यह बात कही तो फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो यह कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है, परंतु फरीसी दोनों मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और कितने शास्त्री जो फरीसियों के दल में से थे उठकर यूं कहकर झगड़ने लगे कि हम इस मनुष्य में कुछ भी बुराई नहीं पाते, और यदि आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फरीसी पौलुस के पक्ष में हो गए। यह जानकर कि वह फरीसी था, वे उसको बचाने लगे। तब हम आगे पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डालें, पलटन को आज्ञा दी कि उतर कर उसको उनके बीच में से बरबस निकालो और गढ़ में ले आओ। मेरे प्रिय मित्र, मूल भाषा यूनानी के अनुसार पहली बार डॉक्टर पौलुस बहुत झगड़ा अभिव्यक्त काम में लेते हैं। उनकी भाषा रचना के अनुसार मेरा विचार यह है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में यह सबसे बुरा वाद विवाद था। पौलुस का जीवन ऐसे संकट में था कि सेना के सरदार को बीच में आकर पौलुस को उस क्रोधित महासभा में से निकालना पड़ा। मैंने गलियों का पक्ष लेते हुए कहा था कि प्रशासन को कलीसिया के विषय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, परंतु हम यहाँ देखते हैं कि प्रशासन प्रेरित पौलुस की रक्षा करता है। यह निश्चय ही एक अच्छा काम है। हम यहाँ पर फिर से देखते हैं कि सेना का सरदार पौलुस के विरुद्ध घृणा का कारण जाने उसको बचाता है। पौलुस को प्रभु का दर्शन मिलता है। हम प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ते हैं। उसी रात प्रभु ने उसके पास आ खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाड़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। मेरे मित्रों, यहाँ फिर इस बात का स्पष्टीकरण है कि पौलुस परमेश्वर की इच्छा से बाहर नहीं था कि वह यरूशलेम गया। परमेश्वर का आत्मा तो पहले ही पौलुस को चिता चुका था कि यदि वह यरूशलेम जाएगा तो बंदी बनाया जाएगा और कष्ट उठाएगा। इसके उपरांत भी पौलुस यरूशलेम को गया और उस नगर में प्रभु की गवाही दी। मेरे मित्रों, अब परमेश्वर उस पर प्रकट करता है कि जिस प्रकार उसने यरूशलेम में प्रभु की गवाही दी है, उसी प्रकार वह रोम में भी प्रभु की गवाही देगा। यह परमेश्वर की रीति है। इससे पूर्व पौलुस के पास यरूशलेम में एक ऐसा अवसर नहीं था कि वह प्रभु की ऐसी सामर्थी गवाही को दे। अब परमेश्वर उसे रोम में गवाही का अवसर प्रदान करना चाहता है। यह परमेश्वर की इच्छा थी कि वह रोम भी जाए। मेरे मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि प्रभु ने पौलुस को नहीं झिड़का। उसने यह नहीं कहा कि देख पौलुस, मैंने तुझसे कहा था कि यरूशलेम नहीं जाना है, क्योंकि वहां तू समस्या में पड़ जाएगा। जी हाँ, ऐसी कोई भी बातें यहाँ पर नहीं होती है। इसकी अपेक्षा प्रभु उसे प्रोत्साहित करता है और वह कहता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा वह रोम को जाएगा और वहां पर भी परमेश्वर के लिए बड़ी बड़ी गवाहियों को देगा। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में और उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए मार्ग तैयार करता है। वह मुझे और आपको बड़ी सभाओं में या छोटी सभाओं में खड़े होकर उसकी गवाही में मदद करता है। क्या आज आप और मैं परमेश्वर की ऐसी आत्मा की अगुवाई पाकर अपने जीवन की गवाही बांट रहे हैं या नहीं? हम आगे देखते हैं पौलुस के विरुद्ध षड्यंत्र। प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एका किया और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार ना डालें, तब तक खाएं या पिए तो हम पर धिक्कार है। मेरे विचार में पौलुस के मृत्यु तक तो वे बहुत भूखे और प्यासे हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने जो कसम या शपथ खाई यह बहुत कठिन था कि जब तक पौलुस ना मारा जाए वे कुछ भी ना खाएंगे। हम प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसके 13 से 15 पद में आगे पढ़ते हैं, जिन्होंने आपस में यह शपथ खाई थी कि वे 40 जनों के ऊपर थे, उन्होंने महायाजकों और पुरनियों के पास आकर कहा, हमने यह ठाना है कि जब तक हम पौलुस को मार ना डालें, तब तक यदि कुछ चखें भी तो हम पर धिक्कार है। इसलिए अब महासभा समेत पलटन के सरदार को समझाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए, मानो कि तुम उसके विषय में और भी ठीक जांच करना चाहते हो और हम उसके पहुंचने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तैयार रहेंगे। मेरे मित्रों, इस वचन को पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि आज जो हम बहुत सारे फिल्मों को देखते हैं, इसी प्रकार के कुछ षड्यंत्र का शिकार होते हैं। यह पौलुस की हत्या का षड्यंत्र था। यह तो अच्छा हुआ कि प्रभु ने पौलुस पर प्रकट कर दिया था कि उसकी योजना भिन्न है, वह तो रोम को जाएगा। हम आगे पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसके 16 से 18 पद में, और पौलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में हैं, तो गढ़ में जाकर पौलुस को संदेश दिया। पौलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलाकर कहा, इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जाओ, यह उससे कुछ कहना चाहता है। सो उसने उसको पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा, पौलुस बंधुए ने मुझे बुलाकर विनती की कि यह जवान पलटन के सरदार से कुछ कहना चाहता है, उसे उसके पास ले जा। मेरे प्रिय मित्र, यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस अपनी रोमी नागरिकता का अधिकार प्रकट करता है। यह उसका मौलिक अधिकार था। यहाँ पौलुस के परिवार की और अधिक जानकारी दी गई है कि उसकी बहन अपने परिवार के साथ यरूशलेम में रहती थी। मेरे प्रिय मित्र, यह स्थिति बहुत ही कठिन है, फिर भी परमेश्वर अपने रीति से पौलुस को बचाना चाहता है या बचाता है, क्योंकि वह उसे अभी रोम को ले जाएगा, जहां पर पौलुस को वहां भी गवाही देना है कि परमेश्वर सामर्थी है। मेरे प्रिय मित्र, यदि आज आप किसी भी प्रकार की कठिनाइयों में हैं, सताव में हैं, तो इस बात को जानने का प्रयत्न करें कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है। हो सकता है कि परमेश्वर इस कठिन समय के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है, आपके जीवन से महान कार्यों को प्रकट करना चाहता है। मेरे प्रिय मित्र, यदि आप दुखी हैं, निराश हैं, चिंताओं में हैं, परेशानियों में हैं, समस्याओं में हैं, प्रभु के पास आएं और पौलुस के जीवन से सीखें कि ऐसे कठिन परिस्थिति में भी पौलुस नहीं घबराया, क्योंकि वह जानता था कि यह परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर उसके साथ में है। इस बात को जाने कि जब परमेश्वर आपके साथ में है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? मनुष्य जिसे उसने बनाया है वह आपका क्या कर सकता है? जी हाँ, आज अपने आप को प्रभु के निकटता में लाएं, उससे प्रेम करें और अपने कठिन पल के लिए उसे न कोसें, परंतु उससे प्रार्थना करें, प्रभु इन दिनों में आप मुझे सिखाएं, मुझे बताएं, मैं भी पौलुस के समय इस कठिन समय में आपके नजदीक रहना चाहता हूं। तो आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और इस अध्ययन के द्वारा जो बातें हमने सीखी है अपने जीवन में आने के लिए प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पौलुस के जीवन के लिए, आज के इस अध्ययन के लिए, कि ऐसे कठिन समय में भी आपने पौलुस को संभाला, अपनी आत्मा की अगुवाई दी। आज हमारी प्रार्थना है हमारे उन भाई बहनों के लिए जो निराश हैं, दुखी हैं, जो सताव में हैं, कठिनाइयों में हैं, पिता परमेश्वर आप उनकी भी सहायता करें, ताकि वे इस बात को जान सके कि ऐसे कठिन समय में भी आप अपनी महिमा उनके जीवन से लेना चाहते हैं। प्रभु आप उन्हें सामर्थ प्रदान करें, आपके वचन की विहित की बातों को उन्हें समझाएं, पवित्र आत्मा आप उन्हें स्पष्ट करें और उनकी हर एक समस्या में आप अपनी महिमा लें, उन्हें धैर्य और हियाव दें, ताकि वे आप पर भरोसा और विश्वास रख सकें। धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने हम सबको आशीषित किया है, पौलुस के जीवन से आपने हमें सिखाया है कि आप हमारे साथ में रहते हैं। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414, याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।